हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आशी अभिमान को शादी का एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मानसी के कहने पर उसने अभिमान के लिए एक लग्जरियस गाड़ी बुक करवाई थी। जल्दबाजी में आशी ने डॉक्यूमेंट्स और बाकी फॉर्मैलिटी के लिए अपनी आईडी के बजाय आशिका की रियल आईडीज भेज दी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के कहने पर इशिका सिंघानिया मेंशन पहुंची। नक्श इशिका के लिए सिंघानिया मेंशन जाने वाला था, ये सोचकर अभिमन्यु ने रूही को अपने पास ही रख लिया था। जब से इशिका को राधिका और केशव के अपने पेरेंट्स होने का सच पता चला था, उसके बाद से वो उनसे पहली बार मिल रही थी। अभिमन्यु ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन किसी वजह के चलते वो आ नहीं सके थे। जैसे ही इशिका ने सिंघानिया मेंशन के अंदर कदम रखा, राधिका जल्दी से उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। पिछले कुछ दिनों से इशिका उनके साथ बेगानों जैसा बर्ताव कर रही थी। इशिका की आंखें बंद थीं, उसने धीरे से कहा, हमेशा आपके साथ एक रिश्ता सा महसूस होता था मिसेस सिंघानिया, आप नहीं जानती, लेकिन मैंने बचपन से यही दुआ की थी कि आप मेरी माँ हों। जब भी आयशा को आपके साथ देखती थी, मुझे आयशा से बहुत जलन होती थी। राधिका इशिका से अलग हुई और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, मुझे सब पता है, तुम पुरानी बातें भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है। अब तो मुझे मिसेस सिंघानिया मत बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ कहकर बुलाती थी। इशिका ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी। इतने में केशव भी बाहर आ गए थे। राधिका उसकी असली माँ है, ये इशिका के लिए थोड़ा चौंका देने वाला जरूर था, लेकिन उसने इस सच को जल्द ही एक्सेप्ट भी कर लिया था। मगर केशव का उसके डैड होने का सच एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, वे उसके लिए पूरी तरह अजनबी थे। केशव इशिका के पास आए और बोले, मुझे इस तरह मत देखो जैसे पहली बार मिल रही हो, तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा बॉन्ड तुम्हारा मेरे साथ था। देखना, जिस दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। केशव इशिका के साथ काफी प्यार से बात कर रहे थे और उसे अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। केशव को अपने सामने देखकर अचानक इशिका को ना चाहते हुए भी आदर्श की याद आ गई। वो आदर्श से कितनी भी नफरत क्यों ना करे, लेकिन बचपन में वो यही सोचती थी कि आदर्श आकर उसे हर दुख से बचा लेगा। आदर्श की याद के साथ ही इशिका के चेहरे पर कड़वाहट के भावों भर आए थे। केशव उसके इस दर्द को समझ सकते थे। उन्होंने इशिका को सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, वो घटिया इंसान किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता था। उसने जानबूझकर तुम्हें और अपनी बेटी को बदल दिया था ताकि उसकी बेटी को सारे हक मिल सकें और वो मेरी और राधिका की बेटी को अपनी आंखों के सामने एक बुरी जिंदगी जीते हुए देख सके। पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करते हैं ना, वे सब यादें अच्छी नहीं हैं। अगर मेरी याददाश्त जानी ही थी और मुझे कुछ भूलना ही था, तो मुझे उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए था, ना कि अपनी अच्छी लाइफ के बारे में, इशिका ने भारी आवाज में कहा। वो केशव से अलग हुई और राधिका से बोली, माँ, आपने गलत इंसान से शादी की, वो इंसान कुछ डिजर्व नहीं करता था। बोलते हुए इशिका कुछ पल रुकी और फिर हैरानी से बोली, आपने कहा था कि आदर्श, मालविका और आयशा कहीं घूमने के लिए बाहर गए हैं, क्या सच में ऐसा है? आदर्श और आयशा इस दुनिया में नहीं रहे। आयशा का मर्डर हो गया था जबकि आदर्श ने सुसाइड कर लिया था जब उसका सच सामने आया था। रही बात मालविका की, तो वो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, केशव ने इशिका को बताया। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी। अब वो पहले की तरह चीज़ें याद करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि कोई उसे झूठ नहीं बोल रहा था। उसके कुछ भी पूछने पर उसे सच बताया जा रहा था। वे सब आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया और केशव से बोला, सर, आपके कहने पर मेरी सीसीटीवी फुटेज पर पूरी नज़र है, नक्श की गाड़ी बाहर पहुंच चुकी है। केशव ने राधिका को इशारा किया। सारे गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर थे और वे जानते थे कि उन्हें सही समय आने पर इशिका को प्रोटेक्ट करना है। केशव ने इशिका का कंधा सहलाया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, घबराना मत, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे में पहुंच गई। केशव भी जल्द ही वहां से हट गए थे। नक्श इस बात को नहीं जानता था कि केशव सिंघानिया मेंशन में रह रहा है। अगले दो मिनट में नक्श घर के अंदर था। उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए राधिका गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही थी। जैसे ही नक्श आया, उसे देखकर राधिका ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका ने सख्त लहजे में पूछा। नमस्ते मिसेस सिंघानिया, वो मैं बस इशिका से बात करने के लिए आया था, वो अपने रूम में होगी ना? नक्श काफी पोलाइटली बात कर रहा था। नक्श ने राधिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और अंदर जाने को हुआ, तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका ने उसे घूरते हुए कहा, इशिका सब कुछ भूल गई है, लेकिन हम नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुमने आयशा के साथ मिलकर इशिका को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा, हर जगह उसे ह्यूमिलिएट किया। चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। नक्श ने सिर हिलाया और राधिका का हाथ अपने हाथ से अलग कर दिया। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपकी तरह सब याद है मिसेस सिंघानिया, पर अफसोस इशिका को नहीं है। और आपकी बदकिस्मती ये है कि आप उसे कुछ बता भी नहीं सकती। बेहतर होगा कि मुझे इशिका से मिलने दीजिए, वरना मैं चिल्लाकर उसे बुला लूंगा। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो नक्श, राधिका ने दांत पीसते हुए कहा और ऐसे जाहिर किया जैसे वो चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती। चलो, किसी को तो इस बात की समझ है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ मैं ही हूँ जो इशिका को संभाल सकता हूँ। उसे मेरे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं है। वैसे बता दूं कि शक तो उसे आप पर भी होता है। मिलते हैं मिसेस सिंघानिया, नक्श ने हवा में हाथ उठाते हुए बाय कहा और फिर सीधा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। इशिका, इशिका, वेयर आर यू? नक्श चिल्लाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही इशिका ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली थी। उसकी मजबूरी थी कि उसे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नक्श को झेलना था। इशिका मुस्कुराते हुए दरवाजे के बाहर आई और उसने नक्श को राधिका के कमरे में आने का इशारा किया। तो आजकल तुम मिसेस सिंघानिया के साथ उनके रूम में रह रही हो, नक्श ने अंदर आते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। मानना पड़ेगा मिसेस सिंघानिया काफी काइंड है, तुम मालविका की बेटी हो ये जानते हुए भी तुम्हें अपने रूम में रहने दे रही हैं। इशिका जवाब में कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे अंदर ही अंदर नक्श पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नक्श उसकी राधिका की बेटी होने का सच जानता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर मालविका का नाम ले रहा था। अच्छा ये बताओ नक्श, यहाँ किस लिए आना हुआ? इशिका ने सीधे सीधे पूछा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नक्श ने इशिका के कंधों को अपने दोनों हाथों से पूछा। वो उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, जानता हूँ दो दिन पहले जब तुमने मुझे कॉल किया था तब मैंने तुम्हें ठीक से जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे मेरे ही चाचू के आदमियों ने किडनैप कर लिया था। वे चाहते थे कि मैं तुम्हारे सामने सच ना बोलूं। कौन सा सच? इशिका ने अपने चेहरे पर हैरानी के भावों के साथ नक्श से पूछा, ताकि नक्श को उस पर किसी तरह का शक ना हो। वे चाहते हैं कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। इशिका, मेरे चाचू पहले से शादीशुदा हैं और उनकी नज़र तुम पर भी काफ़ी पहले से है। मेरी चाची बीमार रहती हैं, उन्होंने उन्हें पागल साबित किया और एक अस्पताल में छोड़ दिया। वो पागल नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। इशिका, तुम अभिमन्यु राजवंश को जानती नहीं हो, उन्हें जो पसंद आता है वे उसे किसी भी हाल में हासिल करके रहते हैं, नक्श ने गहरी आवाज़ में कहा।
मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो कोई भी मुझे आसानी से हासिल कर ले, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इशिका ने सख्त आवाज़ में कहा। तुम्हें ऐसा लगता है इशिका, वैसे भी वो तुम्हारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि तुम खुद जाकर उन्हें हाँ कहोगी। तुम मेरी दोस्त हो इशिका, और इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेट्स गेट मैरिड इशिका, एक बार तुम मेरी हो जाओगी उसके बाद चाचू कुछ नहीं कर पाएंगे, नक्श बोला। जैसा कि अभिमन्यु ने सोचा था और उसने इशिका को समझाया था, नक्श उसी हिसाब से इशिका को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अभिमन्यु उसके लिए सही नहीं है और उसे नक्श के साथ चले जाना चाहिए। इशिका के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने गहरी सांस ली और नक्श से कहा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं नक्श, मैंने मिस्टर राजवंश को भी मना कर दिया था और तुम्हें भी यही कहूंगी। मुझे अपनी लाइफ और करियर में काफ़ी कुछ करना है। मैं तुम्हें रोक थोड़ी ना रहा हूँ, उल्टा मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। तुम अपनी कंपनी को पब्लिक कर सकती हो, तुम जानती भी नहीं इशिका, हम दोनों मिलकर न्यू एनर्जी फील्ड में कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। सोचो, राजवंश खानदान का वारिस और डॉक्टर मर्चेंट, हम दोनों की परफेक्ट जोड़ी होगी, नक्श हल्का हंसते हुए बोला। इशिका को कन्विंस करने के चक्कर में नक्श भूल गया था कि इशिका की डॉक्टर मर्चेंट की आईडी अभी सबके लिए छुपी हुई थी। यहाँ तक कि अभिमान और अभिमन्यु ने भी इस बारे में इशिका को कुछ नहीं बताया था कि उसकी कंपनी पब्लिक हो चुकी है और वो डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर सबके सामने आ चुकी है। इशिका ने आंखें छोटी की और नक्श को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? डॉक्टर मर्चेंट, क्या जानते हो तुम इस बारे में? नक्श का चेहरा दूसरी तरफ था, उसने अपनी आंखें कसकर बंद की। अनजाने में हुई अपनी इस गलती पर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इशिका की तरफ पलटा और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो, भूल गई क्या? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बताया था और ना ही किसी और को। तुम्हें कैसे पता है नक्श, जवाब दो, इशिका ने तेज़ आवाज़ में कहा। मुझे बस पता है, बात ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है या नहीं, और सच कहूँ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम मेरी इशिका हो, वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की नाजायज़ बेटी हो या फिर एक बड़ी रिसर्चर जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, नक्श ने सफाई दी। नक्श की बातों से इशिका को चिढ़ हो रही थी कि सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी वो उसे नाजायज़ बेटी कह रहा था। उसे हमेशा से इस शब्द से चिढ़ थी। इशिका ने गुस्से में तेज़ आवाज़ में कहा, ये अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे सोशल स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ नक्श, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। रही बात अभिमन्यु राजवंश की, तो मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगी। इशिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि तुम मेरे बिना चाचू से अकेले नहीं निपट पाओगी? कभी सोचा है कि तुम्हारे डैड आदर्श सिंघानिया कहाँ है? अभिमन्यु चाचू ने उन्हें किडनैप कर रखा है। राधिका जी ने तुम्हें अपने कमरे में जगह दे रखी है क्योंकि अभिमन्यु ऐसा चाहता है। वो तुम्हें हासिल करके रहेगा। इशिका, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम बस चलो मेरे साथ। नक्श पागलों की तरह बातें कर रहा था। वो इशिका का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से खींच कर ले जाने लगा। इशिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच नक्श ने अपनी गन निकाल ली थी। यही सही वक्त था जब उन्हें नक्श को ट्रैप करना था। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही जा रहा था, लेकिन इशिका को डराने के लिए नक्श ने सामने की तरफ गोली चलाई और अचानक से धमाके के साथ एक आदमी की लाश बाहर जाकर गिरी। वो एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे इशिका की सुरक्षा के लिए वहां तैनात किया गया था। उसकी लाश देखते ही नक्श को सब समझ आ गया। तो तुम लोग मुझे ट्रैप करना चाहते हो, नक्श ने इशिका को गुस्से में देखते हुए कहा और फिर पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लिया। चुपचाप मेरे साथ बिना किसी ड्रामे के चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। इशिका, ये लोग यहाँ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हैं, इसका मतलब तुम सच जानती हो और ये बात भी कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपना न सही लेकिन अपने बच्चे का तो सोच ही सकती हो, नक्श ने दांत पीसते हुए कहा और इशिका को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के कहने पर आशिका नक्श की कंपनी की छानबीन कर रही थी। जो काम इतने दिनों में पृथ्वी और उनके बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए थे, वो आशिका ने एक घंटे में कर दिया था। अभिमन्यु आशिका के सामने ही खड़ा था। आशिका के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने अभिमन्यु से कहा, मिल गया नक्श का वीक पॉइंट,